अध्याय सात, रोम रोम में ब्रजबल। खंड एक, रस्सी के अभाव में अपनी धोती से ही फांसी लगाने के लिए रामरज से रंगी दीवार के ऊपर टंगी बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की तस्वीर के सामने निर्वसन होने की कल्पना मात्र से ही गोदावरी लजा गई। उसे ऐसा करने में आत्महत्या से भी बढ़कर पाप प्रतीत होने लगा। वह चित्र की ओर देर तक एक तक देखी रही और तब निश्चय कर बैठी कि मैं हनुमान जी के सामने नग्न होकर फांसी नहीं लगा सकती। इससे अच्छा तो छत पर से नीचे गली में कूद पड़ना है। छत का ध्यान आते ही वह कोठरी से बाहर निकली। मुंडेर पर चढ़कर नीचे झांकते ही उसे झाई आने लगी। वह डर गई और उधर से उसने अपना मुंह फेर लिया। मुंह फेरते ही उसे सामने गंगा की धारा बहती हुई दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि गंगा में डूबकर भी प्राण दिया जा सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि आत्महत्या का इतना सरल उपाय उसे अब तक क्यों नहीं सूझा था। अब गोदावरी गंगा में डूबने चली। उसके जीवन में सूनेपन का विष स्नेह इतना अधिक घुल चला था कि वह प्रत्येक श्वास के साथ कड़वी निराशा पीने और निश्वास के साथ घृणा की दुर्गंध वमन करने लगी। वह स्पष्ट अनुभव करती थी कि जिस जीवन में स्नेह सम्मान धन आदि में से अहम की तृप्ति का एक भी संबल न हो वह सचमुच मृत्यु है और ऐसे जीवन की मृत्यु ही वास्तविक जीवन। उसकी गिनती उन सुहागिनों में थी जिनका जीवन विधवाओं से भी अधिक दुर्वह होता है। तब उसने आत्महत्या का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने विष खाने की इच्छा की परंतु वह उसे मिल न सका। एक गज रस्सी के अभाव में वह फांसी न लगा सकी। छत के कूदने में उसे भय लगता था इसलिए वह गंगा में डूबने चली। माघ का सवेरा था। आकाश में घोर घटा छाई थी। सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा था और तीर की तरह छेदती हुई तीखी हवा चल रही थी। फिर भी गोदावरी गंगा तट पर पहुंची। शीत की अधिकता के कारण दो ही चार स्नानार्थी इधर उधर घाटों पर दिखाई पड़ रहे थे। घाट भी कम लगे थे परंतु और भी एकांत स्थान की खोज में गोदावरी आगे बढ़ती गई। दत्तात्रेय मंदिर के नीचे से होती हुई भोसला घाट की सीढ़ियां उतरी। यह देखकर कि घाट पर केवल दो आदमी हैं, वह आश्वस्त हुई और उनके हट जाने की प्रतीक्षा में वह पानी में पैर लटकाकर अंतिम सीढ़ी पर बैठी रही। खंड दो, गंगा में कमर भर खड़े जीतू केवट ने पानी में छितनी छान उसमें पड़ा कंकड़ पत्थर सीढ़ी पर उलट दिया और अपनी चपल परंतु अभ्यस्त उंगलियों से वह उस डेरी को टटोलने लगा। धातु खंड का स्पर्श होते ही उसकी संवेदनशील उंगली क्षण भर रुकी। दूसरी उंगली ने उसकी सहायता की और दोनों उंगलियों ने मिलकर वह टुकड़ा उठाकर जीतू की आँखों को दिखाया। आँखों ने उस धातु खंड का मूल्य आका और बिचक कर मुंह ने कह दिया, बस मधसाही। का भयल जीतू, ऊनी कंटों पर चारखाने का अंगोछा कसते शरीर पर पड़ा कंबल और भी कसकर लपेटते हुए ननकू घाटिये ने पूछा। मध्यशाही कान में खोसते हुए जीतू ने परम असंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, न जाने के कर मुंह देखकर उठल रहली गुरु, आज दमड़ी का डोल नहीं देखा। जाड़ा पाला में घंटा भर ता पानी में ऐठन बीत गयल। एहर पे ऐसन चंडाल हो कि मानत नहीं। ईता है हो आज जात्री के आवे का कोनो लक्षण हो नहीं, हमो घाट उठाए के घरे चल जाए। लेकिन बाबू शिवनाथ सिंह के आश्रे बैठल हैं, उ गंगा नहाए के नेमी हौवन। रोज हमरे घाट पर नहालन लेकिन अब तऊ पानी में से निकस आवा, बद्री का हवा बेकार करी। ननकू ने सहानुभूति भरे स्वर में जीतू को समझाया परंतु जीतू पूरब की ओर से आते हुए एक बजड़े को बड़े ध्यान पूर्वक देख रहा था। बजड़ा लहरों पर तिनके की तरह नाच रहा था। स्पष्ट जान पड़ता था कि वह कणधारों के काबू के बाहर हो गया है। फिर भी वे जी जान से उसे किनारे लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बजड़े पर निगाह जमाए हुए ही जीतू ने उत्तर दिया, अब तो ओखरी में मुँह पड़ी गयल हो, मूसर के चोर से कहां तक डराई। जीतू की बात के जवाब में ननकू कुछ कहने जा रहा था कि जीतू की अष्ट वर्षीय पुत्री मछिया की आवाज सुन पड़ी। हे बाबू मुड़ी हम खाब। ठीक उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसके बेटे झिंगवा का स्वर सुन पड़ा। नहीं बाबू मुड़ी हम खाब। और आगे आगे मछिया तथा उसके पीछे झिंगवा दोनों ही भागते हुए आकर बाप के पास ऊपर सीढ़ी पर खड़े हो गए। बजड़े की ओर से निगाह हटाकर जीतू ने अपने बेटे और बेटी की ओर मुंह किया और कहा, घरे रही ता तू लोगन का भाई करेजा खा, बहरे रही ता तू लोग मुंह चबा दौड़ल आवा, हमार जान त बड़ी शासत में हो भाई। जीतू की आंख में कौतुक नाच रहा था, परंतु उसके स्वर की कठोरता से झिंगवा डर गया और उसका चेहरा उतर गया। उधर मझिया की आंखों ने पिता की आंखों में विनोद का संकेत देखा। वह हंस पड़ी और अपने आंचल में से एक बड़ी सी रोहू मछली निकाल कर दिखाते हुए उसने कहा, तुहार मुड़ी नहीं बाबू, रोहू का मुड़ी खाब। रोहू देखकर जीतू के मुंह में भी पानी भर आया। उसने पूछा, इतनी बड़ी रोहू तय कहाँ पा गयी मझिया? अम्मा के घर से आये मातुल गृह के गर्व से गल कर मछिया ने उत्तर दिया। जीतू ने भी संतुष्ट होकर आदेश दिया, ले जो अपने माई से कह दे कि एकर रसा बनावे। जो मछिया और झिंगवा दोनों चले गए। लहरों पर उछलता हुआ बचड़ा घाट के समीप आ रहा था। जीतू ने ननकू से कहा, खाए के जुगुत तब बैठ गए गुरु, अब एक सूखी मिल जाए तब पिहू का ठिकाना हो जात। इतने में बचड़ा किनारे लगा। उस पर सवार एक बंगाली यात्री ने पूछा, झालर ठाकुर का घर कहाँ है? खंड 3। गोदावरी घाट खाली होने की प्रतीक्षा करते करते उब गई। घुटने तक उसके दोनों पैर पानी में थे। शरीर में सर्द हवा लग रही थी, परंतु उसके हृदय में जो आग जल रही थी उसकी आँच ज्यों की त्यों थी। उसने ननकू और जीतू की बातचीत सुनकर इतना समझ लिया कि दोनों ही अभाव पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा से उसे यह सोचकर एक प्रकार का संतोष हुआ कि विश्व में मैं ही अकेली अभावग्रस्त नहीं हूँ। जीतू और मछिया की वार्ता से उसकी संतोष भावना कुंठित हो गई। पति पुत्र से भरे गृहस्थ जीवन का मनोरम चित्र उसकी आंखों के सामने खींच गया। उसके हृदय में टील सी उठी और जिस समय जीतू ने स्नेह गदगद कंठ से अपनी पत्नी की चर्चा चलाई तो उस अज्ञात केवट कामिनी के सौभाग्य पर गोदावरी का मन ईर्ष्या से तिलमिला उठा। उसने उस घाट से उठकर और भी एकांत गंगा तट खोजने का विचार किया। वह अपना विचार कार्यान्वित करने जा ही रही थी कि उसने एक बछड़ा किनारे लगते और उस पर सवार एक परदेसी को अपने पति का नाम लेते सुना। वह चुपचाप बैठी रह गई। उसने सुना कि जीतू परदेसी से कह रहा है, झालर ठाकुर नहीं झालर महाजन। माजी ठीक कहते हो, माजी ठीक कहत हो जीतू, बंगालिन में पंडा के ठाकुर घल जाला, तू जानत नहीं। ननकू घाटिये ने कहा, वाह रे हम नहीं जानती, लड़कियों में झाला गुरु के संगे हम गुल्ली डंडा खेलत हैं और हमें उन्हें नहीं जानी। खूब कहल गुरु। अपनी जानकारी पर आक्षेप हुआ समझकर जीतू ने ननकू को कुछ गर्मा कर जवाब दिया। नवागंतुक यात्री ने जीतू से फिर पूछा, झालर उपाध्याय ठाकुर को क्या जानता? का नहीं जानत सब जानत, कहकर जीतू ने झालर उपाध्याय की हुलिया बताना आरंभ किया। सिरकी जैसन हाथ गोड़ ढल रूखा सूखा चेहरा। जीतू की मुंह से अपनी पति की आकृति का निरूपण सुनकर गोदावरी को स्मरण हो आया कि उसके पति कितने भोले भाले और दुर्बल थे। अपने भोलेपन और दुर्बलता के कारण वह समूचे समाज की परिहास वृत्ति के आलम्बन थे। उन्हें लोग अनायास चपत जमा देते। वह बेचारे सिर खुजलाते हुए इधर उधर देकर चुप हो जाते। उन्हें राह चलते कोई अड़ंगी देकर गिरा देता। वह धूल झाड़कर चुपचाप घर लौट जाते। घर में भी पुरुष उनका अपमान करते और स्त्रियां उपेक्षा। गोदावरी को सुना सुना कर लोग झालर की मूर्खता शक्तिहीनता और अक्षमता पर व्यंग करते और गोदावरी मन ही मन जलती। आज जीतू के मुख से भी अब वही बात सुनकर उसके हृदय का सूखा घाव हरा हो गया। उसने सुना कि बंगाली यात्री जीतू से कह रहा है, नहीं नहीं हमारा ठाकुर दुर्बल नहीं बड़ा बलशाली है। अरे उता हनुमान जी का दर्शन पौले के बाद ना हम पहले का हाल कहते हैं। जीतू बोला, उधर फिर बिना रुके श्रद्धा विगलित स्वर में ननकू भी बोल चला। झालर महाराज का नियम था कि वह बिना संकट मोचन हनुमान का दर्शन किए अन्न नहीं ग्रहण करते थे। 2 साल हुए सावन के महीने में सूर्य ग्रहण पड़ा। यजमान यात्री के चक्कर में उस दिन झालर को हनुमान जी के दर्शन का ध्यान न रहा। दिन भर के थके मादे झालर रात के 9 बजे घर आए। नहा धोकर भोजन के लिए आसन पर बैठे, परंतु ज्यों ही उन्होंने पहला ग्रास उठाया कि उन्हें स्मरण पड़ गया कि आज हनुमान जी का दर्शन नहीं किया। बस वहीं हाथ रोके उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी थाली देखती रह, मैं दम भर में दर्शन करके लौट आता हूँ। माँ ने उन्हें मना किया, परंतु उन्होंने नहीं माना और घर से निकलकर संकट मोचन का रास्ता पकड़ा। जानते हो बाबू, संकट मोचन का मंदिर नगर से 1.5 कोस दूर है। दिन दोपहर भी वहाँ कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बीच में रामापुरा है जहाँ तीर कमानधारी डोम दिन दहाड़े बटमारी करते हैं। मंदिर के चारों ओर खरा जंगल है जिसमें भयंकर जंगली जानवर ही नहीं बड़े बड़े जहरीले सांप बिच्छू भी रहते हैं। रास्ते में 80 का विकट नाला है। बरसात में तो उसकी यही दशा हो जाती है कि यदि उसमें हाथी भी पड़े तो चिथड़ा होकर बह जाए। ख्याल करो बाबू, उसी मंदिर की ओर भरी बरसात अमावस की रात में दुर्बल ब्राह्मण अकेला चल पड़ा। बादल घिरे थे, बूंदे पड़ रही थी, रह रहकर बिजली चमक उठती थी और उसी के प्रकाश में ब्राह्मण अश्वमेघ के घोड़े की तरह निर्द्वंद दौड़ा चला जा रहा था। जहाँ उसे डर लगता वह जोर से चिल्ला उठता, खलदम्बन दावा अनिल राम श्याम घनमोर, रोम रोम में ब्रजबल जय केसरी किशोर, और फिर दूने वेग से अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाता। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते जब झालर नाले के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नाला उमड़कर समुद्र हो रहा है। उसे पार करने का कोई साधन न देख उन्होंने धोती और दुपट्टा उतारकर एक पेड़ की डाल पर रख दिया। लंगोट के ऊपर अंगोछा कसकर कूदने के लिए उछले, परंतु आगे न बढ़ सके। उनका हाथ पकड़कर किसी ने पीछे से खींच लिया। अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटका दे हुए जब वह घूमे तो उन्होंने देखा कि एक हट्टे कट्टे आदमी ने उनका हाथ कसकर पकड़ रखा है। उन्होंने दयनीय मुद्रा से उसकी ओर देखा। उसने झालर से पूछा, क्या आत्महत्या करना चाहते हो? नहीं, मैं हनुमान जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। झालर ने उत्तर दिया। नाले की पखर धारा की ओर इशारा करते हुए उस अज्ञात व्यक्ति ने झालर से कहा, इस धारा में हाथी भी अपना पैर नहीं जमा सकता, तुम्हारी तो हड्डी का भी पता न लगेगा। अब चाहे जो हो, मैं तो संकट मोचन का दर्शन किए बिना अन्न नहीं ग्रहण कर सकता, यही मेरा नेम है। अत्यंत विनीत स्वर में झालर ने आगंतुक को समझाया, अब तुम समझ लो कि तुम्हें संकट मोचन का दर्शन हो गया है और लौट जाओ। अज्ञात व्यक्ति ने कहा, यदि झालर को अवसर मिला होता तो वह अब तक उस व्यक्ति के पास से भाग निकलते, परंतु उसने तो उनका हाथ पकड़ रखा था। दिन भर के परिश्रम से तो वह परेशान थे ही, उधर उनके उदर में सुधा ने भी लंका दहन मचा रखा था। अतः स्वभाव के प्रतिकूल आज वह कुछ कड़े पड़ गए और झल्ला कर बोले, तुम्हारे कहने से समझ लूं कि दर्शन हो गया। यहाँ हनुमान जी कहाँ है? परम दुर्बल और निरी झालर को गरमाते देख वह व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, समझ लो मैं ही हनुमान जी हूँ। इस पर झालर एकदम बिगड़ उठे। उन्हें जीवन में पहली बार क्रोध आया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, सभी ऐरे गैरे हनुमान जी बनने लगे तो हो चुका। तुम हनुमान जी हो तो प्रमाण दो। क्या प्रमाण लोगे? यदि तुम हनुमान जी हो तो मुझे वही रूप दिखाओ जो उन्होंने सीता जी को दिखाया था। वही रूप, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कुछ सोचकर झालर ने कहा, डरोगे तो नहीं? नहीं। अच्छा तो देखो, उस व्यक्ति ने कहा और सहसा उसका शरीर बढ़ने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो उसका सिर आकाश छू लेगा। झालर उपाध्याय ने भयवश आंखें मूंद ली और घिघिया कर उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पहले वाला आदमी उनके सामने खड़ा है। उस आदमी ने फिर कहा, बोलो मुझसे क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही पाओगे। झालर को उसी दिन दोपहर की वह घटना स्मरण पड़ी जिसमें एक पंडे ने झापड़ मारकर उनसे रकम छीन ली थी और वह सदा की भांति दुम दबाकर वहां से हट गए थे। यह ध्यान आते ही उनके मुंह से सहसा निकला, आप अपनी काने उंगली का बल मुझे दे दीजिए। हनुमान जी फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हारा कलयुगी कलेवर इतना बल सह ना सकेगा, तुम अपना मुंह ऊपर उठाकर खोल दो। स्वाति ने प्यासे पपीहे की तरह झालर ने अपना सुक्ति मुख ऊपर उठाया। हनुमान जी ने भी अपना रोवा तोड़कर उनके मुख में डाल दिया। मुंह में रोवा पड़ते ही झालर के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वह वायु वेग से दौड़ते हुए घर वापस आए। आते ही वे चौक में घुस पड़े और थाली में रखा भोज्य पदार्थ दोनों हाथों से उठा उठा कर मुँह में ठूसने लगे। थाली का सामान समाप्त होने पर उन्होंने चौके में बचे सामान में हाथ लगाया। जब वह भी समाप्त हो गया तो भूख भूख चिल्लाते हुए वह भंडार में घुस गए और आटा दाल चावल जो भी चीजें सामने आई सब भक्षण करने लगे। ननकू की बात सुनते सुनते गोदावरी को उस रात की घटना स्मरण हो आई। झालर के उस अद्भुत आचरण से लोगों को ऊपरी फेर का भ्रम हो गया। उन्होंने उन्हें भंडार में घुसा देख बाहर खिड़की लगा दी थी और झालर रात भर भंडार में अन्न ध्वंस करते रहे। उधर ननकू कहता जा रहा था, हाँ बाबू, सवेरा होने पर झालर इसी घाट पर वह जो टेढ़ी मड़ी खड़ी है उसी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए। यही मड़ी तब बिल्कुल सीधी थी। लोगों ने समझा यह वही रोने वाला झालर है। कोई कोई बोली भी काटने लगे। एक ने कहा, गुरु तनी संभाल के, कहीं तोरे धक्के से मड़ी न लौट जाए। उस वक्त झालर महाराज तो आपे में थे नहीं, सो उन्होंने गरज कर कहा ई बात और मड़ी पर जो उन्होंने अपने शरीर का दबाव दिया तो मड़ी अररा झुक गई। देखने वाले लोग बाप बाप चिल्लाकर भागे। यह देख झालर महाराज बड़े जोर से हंसे और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर मड़ी के नीचे रख दिया। मड़ी उस पर आज तक रुकी खड़ी है। इसके बाद उन्होंने किल किलाकर विकट ध्वनि की और उछलकर गंगा की बाढ़ में कूद पड़े। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए यह कोई नहीं जानता। इसके बाद वह कहाँ गए मैं जानता हूँ, आगंतुक बंगाली बोला। आप जानते हो, आश्चर्य से ननकू ने कहा। उधर गोदावरी भी अपने प्रत्येक लोम कूप को कान बनाकर आगंतुक बंगाली का उत्तर सुनने के लिए आतुर हो गई। आगंतुक भी कहने लगा, मेरे बड़े भाई मुर्शिदाबाद के राजा के दीवान हैं। राजा साहब भी झालर ठाकुर के यजमान हैं। यही 2 वर्ष पहले सावन का महीना था, सवेरे का दरबार लगा था कि झालर ठाकुर पानी से तर केवल एक अंगोछा पहने दरबार में घुस पड़े और राजा साहब से कहा कि मैं भूखा हूँ। राजा ने ही नहीं हम सभी ने यही समझा कि ठाकुर का मस्तिष्क विकृत है, परंतु उन्हें कष्ट न होने पाए यही सोचकर हमने उनके निवास और रसद का प्रबंध कर दिया। थोड़े ही देर में भंडारी ने कर सूचना दी कि ठाकुर ने केवल आटा ही 1.5 मन ले लिया और उपले की डेरी में आग दहका कर उसी आटे का मोटा मोटा लिट्टी बना उसमें सिद्ध कर रहे हैं। यह सुनकर हम सबको निश्चय हो गया कि ठाकुर पागल हो गए, परंतु राजा साहब को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपने मुसलमान महावत को बुलाकर कहा कि वह हाथी लेकर ठाकुर की ओर जाए और वह उधर न आने के लिए चाहे जितना कहे उनकी एक न माने। महावत ने तुरंत आदेश का पालन किया, वह हाथी लेकर ठाकुर की ओर बढ़ा। ठाकुर उस समय भोजन कर रहे थे। वह हाथी उधर न लाने के लिए हाथों के इशारे से बार बार हूं हूं करने लगे, परंतु जब हाथी न रुका तो उन्होंने लिट्टी का एक टुकड़ा तोड़कर उसी से हाथी को मारा। हाथी उल्टे पैर भागा। जब महावत ने राजा साहब को इसकी सूचना दी तो वह ठाकुर के पास गए और उनसे निवेदन किया, मेरे उद्यान में कहीं से गैंडा आ निकला है। हम दोनों ने उसे उसी में साल भर से बंद कर रखा है। उसके कारण मेरा सुंदर उद्यान नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। आप हमारा संकट दूर करें। ठाकुर ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हम सब लोग महल में से होकर उद्यान की ऊपरी खंड में जा बैठे। ठाकुर ने उद्यान का साल भर से बंद दरवाजा एक ठोकर मार कर तोड़ गिराया और भीतर प्रवेश कर गैंडे को ललकारा। गैंडा भी उद्यान में मानुष गंध पाकर बफरता हुआ सामने आया। उसके सामने आते ही ठाकुर बिजली की तरह उस पर झपटे। उसका एक पिछला पैर उन्होंने अपने पांव से दबाकर दूसरा पैर हाथ से ऊपर उठाया और जैसे बजाज कपड़े का थान फाड़ता है वैसे ही उसे फर से चीर कर 2 टुक कर दिया। तत्पश्चात वह बैठकर गैंडे का रक्त चुल्लू में भरकर वेद मंत्रों से अपने पितरों को तर्पण करने लगे। उन्होंने राजा साहब को भी उसी से तर्पण कराया और इसके पश्चात वहाँ से विदा हो गए। आगंतुक बंगाली की बात सुनकर जीतू और ननकू दोनों स्तब्ध हो उठे। गोदावरी के निस्तेज आँखों में भी चमक आ गई। इतने में आगंतुक ने पुनः पूछा, ठाकुर का कोई लड़का नहीं है?
नहीं, उनकी धर्म पत्नी है, ननकू ने उत्तर दिया।
धन्य है धन्य है, मैं उस साध्वी के दर्शन करूंगा जिसे ऐसा देवता पति मिला, श्रद्धा विगलित होकर यात्री ने कहा। गोदावरी की छाती गर्वस्फित हो उठी। उसके भूखे अहम को भोजन मिला और वह पानी में से पैर निकाल कर उठ खड़ी हुई और घर लौटने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी।